Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Jaisa ek kahenge aap, to dusra aayega. लाना नहीं पड़ेगा परंतु आएगा. तुम अकेले ही आ जाना, इसका मतलब दूसरे नहीं आना. दूसरे का निषेध, एक का ग्रहण. परंतु एक का ग्रहण करने में भी बाधा है. इसमें बाधा है, यहां श्रुति इस तरफ संकेत कर रही, बहुत ऊंचा संकेत है इसका. तुम्हें कुछ होना नहीं, तुम्हें ब्रह्म भी नहीं बनना है, तुम्हें आत्मा भी नहीं बनना है, तुम्हें जीव भी नहीं बनना है, तुम्हें कुछ भी नहीं बनना है, तब ही सब कुछ हो जाओगे तुम. कुछ बनने में तो कुछ भी बनोगे, ज्ञानी भी बनोगे तो अज्ञानी से डरते रहोगे. क्योंकि ज्ञानी को ही तो अज्ञान बाधक होता है. अज्ञानी को अज्ञान बाधक होता है क्या? अरे अज्ञानी की अपेक्षा से ज्ञानी के लिए बड़ा संघर्ष है महाराज, समझिए ना. अज्ञानी के लिए यह संघर्ष नहीं है, यह संघर्ष ज्ञानी के लिए है, समझिए ना. जो ज्ञानी अपने को मानता है उसको अज्ञान हमेशा भयभीत करते रहता है. जो अपने को विद्वान मानता है उसको वो हमेशा डरता रहता है. हमारी विद्वत्ता में किसी प्रकार की कोई ये ना है, समझ. श्रुति कहती है कि उसको भी तुम्हें छोड़ना है, अहम को भी छोड़ना है, अहम ब्रह्मास्मि भी छोड़ना है. ज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, ये बोध भी समाप्त होना चाहिए, समझे. बोध भी है, हाँ, ये बोध की उपयोगिता तब तक है अज्ञान की निवृत्ति तक, अविद्या की निवृत्ति तक, माया की निवृत्ति तक. ये समाप्त होने के बाद ये भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसकी भी आकांक्षा मत कर. वो भी धन है, ज्ञान धन है कि नहीं? ये किसका धन है? ये अपना धन है, आत्मज्ञान. ज्ञान का मतलब आत्मा. तो इसलिए जीव का धन और ईश्वर का धन दोनों को भी क्या करना है? आकांक्षा मत कर, चाहना मत कर. चाहना करोगे, चाहे अपने भी धन की पालन करने की भी चाहना करोगे, तो चिंता से मुक्त नहीं हो सकते हो. कहोगे अभी नेता लोग चिंता में है कि नहीं है? किस चिंता में है? किस चिंता में है? नहीं समझे आप? अरे अपने धन की चिंता में है भाई, उनको देश के धन की चिंता नहीं है. उनको अपने धन की चिंता है कि अपने धन, हमारे धन की रक्षा कैसी हो, इसलिए लगे हुए हैं. कहने का तात्पर्य है कि इसलिए स्वधन और परधन. ए देवी, तो अभी तक इतना नहीं समझी हो, इधर बैठ जाओ. इधर है ना तुम लोगों का स्पेशल, तो फिर उधर क्यों बैठती हो? कहने का तात्पर्य है कि स्वधन और परधन ये आध्यात्मिक धन, भौतिक धन, भौतिक धन का तो कोई वास्तविक बहुत तुच्छ माना गया है, परंतु मूल्यवान धन आध्यात्मिक धन है। क्या भौतिक धन जो है वो तो तुच्छ है, वो व्यवहार के लिए है भौतिक धन, परंतु आध्यात्मिक धन सुख के लिए है, आनंद के लिए है। श्रुति इधर भी निषेध करती है, पर धन का भी त्याग कर देना लौकिक धन, पर धन का मतलब लौकिक धन, माया निर्मित धन, अविद्या निर्मित धन, ये पर धन है। क्या ये पर धन है? उसमें तुम्हारा देह आ गया है, देह संपत्ति है कि नहीं है? देह संपत्ति है ना, देह संपत्ति है, तो ये पर धन है, ये अविद्या का धन है, माया का धन है। और जीव, जीव भाव, अहम भाव, ये स्वधन है। अहम भाव जो है वो माया का नहीं है, वो जीव का है, ये स्वधन है। इससे ये भी संकेत श्रुति करती है कि पर धन का त्याग करो का मतलब मेरापन छोड़ो। क्या करो? मेरापन छोड़ो, किसी को भी तुम मेरा मत समझो, तुम्हारा है ही नहीं कुछ, सब जो कुछ है वो माया का बना हुआ है, माया का बना हुआ है। तो कहा कि चलो मेरेपन को हम छोड़ देंगे, परंतु किससे छोड़ो? मेरेपन को छोड़ना है तो किससे छोड़ना है और कैसा छोड़ना है? मेरेपन को छोड़ना है तो ईश्वर को ईश्वर का मान करके मेरेपन को छोड़ो। समझना, मेरा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर का है। इससे क्या सिद्ध होगा? तुम्हारी ईमानदारी सिद्ध होगी, तुम मूल्यवान बनोगे ईश्वर के दृष्टि से। मेरापन के जगह तेरापन को लाओ, अर्थात संसार के वस्तुओं में परमात्मा को लाओ, परमात्मा धन को लाओ, तो प्रत्येक वस्तु को परमात्मा का समझते जाओ तो माया का हट जाएगा, माया दूर हो जाएगी। फिर जो जीव का धन अहम मैं हूं, ऐसी जो आपने सत्ता का बोध करता है, तो इसलिए तो असत्ता का मरने का डर क्यों लगता है? किसको लगता है मरने का डर? आपको पूछा तो मरने का डर किसको लगता है? जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म होता है उसी को ही मरने का डर होगा कि नहीं? ये अहम भाव उत्पन्न हुआ इसलिए ये अहम भाव को ही मरने का डर है। समझे ना? तो इस धन की भी रक्षा करोगे तुम, अहंकार की रक्षा करोगे तो क्या होगा? मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे तुम? नहीं, ये स्वधन है। इसलिए श्रुति इधर भी संकेत कर रही है कश्यस्वित धनम, इस शब्द से पर धन की, अर्थात न माया के धन की इच्छा करो, न ईश्वर के धन की इच्छा करो, और न जीव के धन की इच्छा करो। माया का धन भी छोड़ो और जीव का धन भी छोड़ो, क्योंकि ये कोई भी धन होगा और उस धन की कामना होगी तो कामना तुम्हें, तुम्हारा सर्वस्व बिगाड़ देगी, तुम्हारा सर्वस्व बिगड़ जाएगा। इसलिए श्रुति कहती है माग्रदो, अर्थात किसी को ग्रहण मत कर, ग्रद धातु ग्रहण अर्थ में भी आता है और इच्छा अर्थक भी आता, आकांक्षा अर्थक भी आता है। तो कहने का तात्पर्य है कस्य अस्मित धनम, धन चाहे किसी भी प्रकार का हो, धन अनर्थकारक ही होता है। क्या होता है? धारण करना अनर्थ का कारण है। धारण करने का मतलब होता है बोझ होना। माला हमने उठाई, माला को धारण कर दिया, धारण कर दिया तो इसका बोझ आया है कि नहीं हाथ पर? उसको पकड़ने के लिए, उसको संभालने के लिए हाथ को कुछ तकलीफ होगी का नहीं होगी? धारण भी करोगे और तकलीफ से मुक्त भी होना चाहोगे तो दोनों कैसा होगा भाई? चाहे किसी भी वस्तु को हो, क्या किसी भी वस्तु को हो। इसलिए कहा कि कस्य अस्मित धनम मा गृध, ये पूर्ण निषेध है, पूर्ण निषेध। अब ये स्पष्ट करके बता दिया। अब इसके बाद दूसरे श्लोक का थोड़ा सा उच्चारण करके प्रारंभ करता हूं। दूसरे मंत्र में श्रुति कहती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतम समाहा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। श्रुति के वाक्य बड़े गजब के होते हैं, मतलब बड़े आश्चर्यकारक होते हैं। अब प्रश्न ये होता है, यहां इस उपनिषद का प्रारंभ तो एकदम ज्ञान से ही होता है, प्रारंभ ज्ञान से ही। अब ज्ञान से प्रारंभ हो तो फिर ज्ञान की ही बात चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तुरंत कर्म की बात आ गई, ऐसा क्यों? गीता में भी भगवान ने एकदम ज्ञान की बात चालू कर दिया अर्जुन को और तुरंत कर्म की बात आ गई। तीसरा अध्याय में क्या बता दिया? कर्म बता दिया, ऐसा क्यों? फिर प्रश्न होता है कि नहीं? या उपनिषद में भी एकदम ज्ञान की बात प्रारंभ कर दी और तुरंत कर्म का बताना चालू कर दिया? इसका भी कुछ तात्पर्य होगा कि नहीं होगा? तात्पर्य है। अब या वहां वहां जो बात बताई, सब छोड़ना है, सब छोड़ना है, सब छोड़ना है, यही बता रही है। और यहां श्रुति कह रही है कि तुम्हें यह करना भी है। अर्जुन इसी चक्कर में तो पड़ा था कि कहा कि आप बात करते और फिर कहते हैं कि ये करो। ऐसे ही पहले श्रुति कहती मा गृध, तुम कामना ही मत कर, किसी को ग्रहण ही मत कर। परंतु तुम ग्रहण करोगे या नहीं करोगे, कुछ करने के बिना तुम्हें मालूम पड़ेगा। हा? भाई त्यागी तो जब तुम कहोगे कि जब तुम्हारे पास पहले धन हो प्राप्त करो और फिर उसको फिर आप छोड़ो, तब तो कहा जाएगा कि भाई नहीं ये त्यागी है। पहले कुछ नहीं यार कहा कि नहीं हम तो त्यागी हैं। इसलिए श्रुति कहती है कि तुम्हें करना है, समझना। निषेध कर रही पर कैसा करना है? कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजी विशेष छतम समाहा, तुम्हें कर्म करते हुए ही जीना है। कितना? 100 वर्ष। जिजी विशेष छतम समाहा अर्थात 100 वर्ष जीने की इच्छा कर। अब पहले कहते हैं कि मा गृध, इच्छा मत कर, और फिर कहते हैं कि जीने की इच्छा कर। तो प्रश्न होते कि नहीं होते। पहले कहते कि तुम कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सब छोड़ना है, और फिर कहते कि कर्म करना है। अब दोनों बात कैसी है भाई, बड़ा विचार है, समझ बताएंगे आप लोगों को। क्यों हम आते हैं तो इसीलिए तो आते हैं, या रोटी खाने के लिए तो नहीं आते हैं ना। परंतु कुछ कुछ लोग समझते हैं कि बाबा जी को रोटी नहीं मिलती इसलिए खाने के लिए आते हैं। कल एक मजा बता देता हूं मैं। कल मैं पनवेल से आ रहा था, पनवेल पहुंचा जब गाड़ी ट्रेन से उतरा, पैड़ी पर चढ़ने लगा तो दो भिखारी, मेरे हाथ में एक झोला था, दो भिखारी वहां बिल्कुल इसमें वो जो ब्रिज है ब्रिज के साथ सटे हुए खड़े थे। मेरे को देख करके उसमें एक भिखारी कहता है कि देखो ये भिखारी, क्या वो दूसरे को बता रहा है, कहा देखो एक भिखारी। हमने धीरे से कहा कि मैं श्रीमंत भिखारी हूं। इतना ही बोल करके मैं आगे निकल गया। वो मेरे को देखने लगे। देखो कर्म करो, क्या कर्म छोड़ना नहीं है तुम्हें, परंतु कर्म बनाना भी नहीं है और कर्म बनना भी नहीं चाहिए, क्या यही तो श्रुतियों की विशेषता है महाराज, समझे ना। कर्म तुम छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि शरीर में आ गए हो। कर्म छोड़ने का अर्थ क्या है? कर्म छोड़ने का अर्थ है शरीर की समाप्ति, समझे ना। और जब शरीर में आ गए तो कर्म को छोड़कर के कैसे रह सकते हो तुम? एक क्षण भी नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति निर्गुण ही। तुम एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकते हो, परंतु तुम ये तो कर सकते हो। कर्म क्या है इसको समझ तो सकते हो। कर्म करने में बाधा नहीं है, कर्म समझने में बाधा है। कर्म बाधक तब होता है कि जब कर्म को हम नहीं समझते हैं तब। कर्म के रहस्य बड़े कठिन है महाराज, बड़े गहन। गहना कर्मनोगति भगवान भी कहते हैं, क्या गहना कर्मनोगति है। कर्म को समझना हे अर्जुन अत्यंत दुस्तर है, अत्यंत कठिन है। जैसा माया को समझना बड़ा दुस्तर है, देखो कर्म से तुम तर गए तो माया से तर गए। बड़ा इस पर हम कभी कभी चिंतन करते हैं, बड़ा आनंद आता है। और वो कर्म भी मुझे तब ऐसा लगता है कि वाह 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 वा, क्या कर्म आनंद से अलग नहीं है, क्या कर्म आनंद से अलग नहीं है। कर्म दुख रूप है ही नहीं, कर्म को दुख रूप हम बनाते हैं। इसलिए कर्म को आनंद रूप भी हमें बनाना आना चाहिए। प्रश्न यहां है, कर्म करने में कर्म बाधक नहीं है। देखो जैसा किसी को बांधना एक कर्म है ना, ऐसा ही छोड़ना भी कर्म है कि नहीं है। जैसा बांधना एक कर्म है, जैसा सरकार किसी अपराधी को उठा करके जेल में ले जाती है और सजा समाप्त होने के बाद जैसा जेल से बाहर छोड़ देती है, तो ले जाना भी कर्म ही है और छोड़ना भी कर्म ही है। कर्म से ही कर्म को छोड़ा जाता है, जैसा कहते हैं कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ये कांटा गड़ गया और उस कांटे का दर्द, कांटे से दर्द हो रहा है, उस दर्द से मुक्त होना चाहते हैं, तो जो गड़ा हुआ कांटा अंदर जो गया, घुसा हुआ कांटा, उसको निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसके बिना निकलेगा वो, दूसरा कांटा उसके अंदर घुसाना पड़ेगा। अब वो दर्द नहीं होगा क्या? वो दर्द होने के लिए घुसा रहे हो या दर्द मिटाने के लिए घुसा रहे हो? किसके लिए मिटा रहे? कहा कि डॉक्टर साहब इस रोग तो निकालना है, भला ऑपरेशन करो, कोई बात नहीं, फाड़ दो, अरे दर्द हो जाएगा। कहा होने दो, कोई बात नहीं, अब बताओ। अब वो दर्द होना तुमने सुखकारक मान रहे कि दुखकारक मान रहे? बड़े रहस्य है महाराज कर्म के अंदर, इसलिए इसको समझना है। कर्म में ज्ञान नहीं है ऐसी बात कतई नहीं है। ऐसे बात रहती तो श्रुति कर्म को ब्रह्म नहीं कहती है, कर्म ब्रह्म है क्या? परंतु हमें समझ में नहीं आता है। कर्म करने में बाधा नहीं, कर्म समझने में बाधा है। तो बात उस ज्ञान को आप श्रुति कर्म के दृष्टि से समझा रही है, क्योंकि आप लोगों की भावना है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा, दुकानदारी छोड़ना पड़ेगा, घरदार को छोड़ना पड़ेगा, बाल बच्चे को छोड़ना पड़ेगा आदि आदि। आपको लगता है कि नहीं है? तो ये छोड़ने में आपको डर लगता है, इसलिए तो यहां आते नहीं। बाबाओं के पास कोई लोग जाता ही नहीं है, समझना। अभी नोट के लिए लाइन लगती है, इसमें लोग कितने चैनल वाले भी प्रचार कर रहे हैं, सब लोग नेता लोग भी चिल्ला रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं, और पिक्चर देखने के लिए लाइन लगती है तो उसके लिए नहीं चिल्लाते हैं ना? कोई चैनल वाले चिल्लाते कि इतनी या पिक्चर या अटाकी के सामने इतनी लाइन लगी है, और या एटीएम के सामने लाइन लगी तो चिल्ला रहे हैं कि देखो यहां कितनी लाइन है, और डंडे बरसाते, पुलिस उसको भी दिखा रही है, और दूसरी जगह डंडे बिछाते तो वहां ये करती, वहां नहीं दिखाती है। अब क्या बुद्धिमान कहा जाएगा इन लोगों को? नहीं, यहां इन रहस्य को समझना चाहिए, समझे ना? समझोगे ना कर्म के रहस्य को? यदि आप समझोगे तो कर्म तो ब्रह्म ही लगेगा। कर्म के जैसा आनंद का भोग वास्तविक कहीं नहीं मिलेगा आपको, समझे ना? परंतु उसको समझना चाहिए। आपको ये प्रत्यक्ष ब्रह्म को दिखाने के लिए कर्म का उपदेश श्रुति करती है। लोग कहते हैं ना कि महाराज परमात्मा होता दिखता क्यों नहीं है? क्या कर्म ब्रह्म के अभिव्यक्ति का, तत्व के अभिव्यक्ति का साधन है, साधन। साधन के बिना साध्य का कोई अर्थ नहीं होता है। तो कर्म ब्रह्म प्राप्ति का साधन है क्या? कर्म ब्रह्म के अभिव्यक्ति का साधन है। कर्म अपना आप सिद्ध होने का साधन है, इसलिए कर्म का उपदेश। अब कैसा है क्या है, अब घड़ी ने तो जवाब दे दिया है। इसलिए ये कर्म को समझाने के लिए और कर्म के माध्यम से श्रुति और दूसरा कुछ नहीं समझा रही है, उस ब्रह्म को ही ईश्वर को ही समझा रही है, समझे ना, और तुम्हें अपने को ही समझा रही है और कुछ नहीं समझा रही है। इसलिए यहां कहा कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविशेच्छतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।